Now listening, Gyanasthali 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और जैसा कि हर रोज इस गोधुली प्रोग्राम में गोंडा की कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज से आपको रूबरू कराते हैं जो अपने क्षेत्र के होते हैं खास, या बहुत सारी आपको जानकारियां जानने को मिलती है। तो आज उसी कड़ी में हमारे साथ में इत्तेफाक की बात है कि आज तीन मेहमान एक साथ हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम नाम लेना चाहेंगे ललित सोमानी जी का, जो कि पूर्व उप सचिव हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश महेश्वरी सभा के। दूसरी बीच में मौजूद हैं नवीन डागा जी, जो कि अर्थ मंत्री हैं महेश्वरी परिषद गोंडा के। इसके साथ ही नवीन दरगढ़ जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि सचिव हैं महेश्वरी परिषद गोंडा के। आप तीनों का सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं।
धन्यवाद।
और जैसा कि हमारे श्रोताओं को हमने बताया हुआ है कि जब भी कोई पर्सनालिटी आती है तो सबसे पहले उनके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि आपका नाम तो कई लोगों ने सुना होगा, आपके काम को भी जानते होंगे, लेकिन आज थोड़ी सी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ कुछ बातें हम करते हैं ताकि उनको आपके बारे में थोड़ा सा और जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले शुरुआत मैं ललित सोमानी जी आपसे करता हूँ। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को कि आपकी पैदाइश कहाँ की हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, माता पिता और भाई बहनों के बारे में।
मेरी पैदाइश गोंडा में हुई, रानी बाजार में हुई है, और मेरे भाई दिवाकर सोमानी और कमल सोमानी हैं जो कि गोंडा में ही रहते हैं। और दिवाकर सोमानी अभी विश्व हिंदू परिषद के उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
जी, अपने माता पिता के बारे में बताइए।
मेरे पिताजी श्री सत्यनारायण जी सोमानी जी का, जो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश महेश्वरी समाज को जोड़ने में उनका बहुत बड़ा सहयोग था, और मेरी माता जी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश महेश्वरी समाज में सक्रिय थी।
ललित जी, कितने भाई बहन थे आप लोग?
मैं तीन भाई दो बहन थे, दो बड़ी बहनें जो एक गोलाघाट में रहती हैं, एक जमशेदपुर में रहती हैं, और तीन भाई हम लोग यहाँ पे रहते हैं।
जी, बहुत अच्छी बात है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई?
हमारी प्रारंभिक शिक्षा यहीं गोंडा से हुई, उसके बाद मैं कलकत्ता में पढ़ाई कंप्लीट किया, बीकॉम वहीं से किया हूँ मैं।
आपने बीकॉम किया, और अभी इस टाइम में आप प्रोफेशन में क्या कर रहे हैं?
इस टाइम प्रोफेशन में मैं चाय का व्यवसाय कर रहा हूँ।
ओके, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान करके कि आपके पिता ने आपके समाज को जोड़ने का काम किया, एक अहम रोल निभाया कह सकते हैं। चलिए आइए, इसी बीच में हमारे बीच मौजूद हैं नवीन डागा जी, जो कि हमने आपको पहले ही बताया है कि अर्थ मंत्री हैं महेश्वरी परिषद गोंडा के। नवीन जी, अपने बारे में बताइए, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई, कैसा बचपन रहा आपका?
मेरी प्रारंभिक शिक्षा क्लास सिक्स तक मैं कलकत्ता में पढ़ा हुआ हूँ। क्लास सिक्स के बाद सेवेंथ ऑनवर्ड्स हाई स्कूल तक मेरी फातिमा स्कूल में हुई है, उसके बाद से आगे की शिक्षा मेरी गोंडा में ही चलती रही है। बीकॉम का मैं एलबीएस का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, और बाकी तो सारा कार्यभार यहीं पे चल रहा है गोंडा में इस वक्त मेरे द्वारा।
ओके, आपने कहा बाकी की आपकी शिक्षा गोंडा हुई थी, तो क्या बाद में फादर का कोई ट्रांसफर यहाँ हुआ था या पढ़ने सिर्फ कोलकाता गए थे, क्या बात थी?
जी नहीं, मेरी पैदाइश भी कलकत्ता की है, और पिताजी पहले जॉब करते थे जो कि कलकत्ता में जूट मिल में थे। उसके बाद जूट मिल की परिस्थितियाँ पॉलीथीन आने के बाद कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, जिस कारण से उनका मन बिजनेस में भी था, और मेरे यहाँ पे कुछ रिलेटिव्स थे जिनके द्वारा कहा गया था कि आप यहाँ पर आ जाएं और मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस करा दूंगा। तो हमारे फादर यहाँ पे आए और बिजनेस में लग गए हैं।
फादर आए बिजनेस में लग गए, आप अभी क्या कर रहे हैं?
मैं अभी अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ आवास विकास में, एनडी कंप्यूटर सेंटर नाम से।
ओके, ये बहुत अच्छी बात है। और फाइनली आपने बीकॉम किया हुआ था, आप गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं।
जी हाँ,
इसका मतलब है पढ़ाई में तो काफी अच्छे रहे होंगे।
हाँ, इंटर में भी मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा हूँ।
अरे वाह,
टॉमसन से था, फादर को बुलाया भी गया था चेयरपर्सन के पर्पज से, लेकिन आउट ऑफ स्टेशन थे और मैंने कुछ कारण से मना भी कर दिया था, चूँकि उनके पास टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं रहती थी। और फिर बीकॉम में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। सीए का भी मेरा 2 अटेम्प्ट निकल चुका था। उसके बाद चूँकि मैंने मेरे को जॉब नहीं करनी थी, मेरे को अपना ही प्रोफेशन इस्टेब्लिश करना था, तो मैंने अपना ही चूँकि कंप्यूटर में मेरी रुचि थी तो कंप्यूटर का सेटअप इस्टेब्लिश किया और आज की डेट में वो रन कर रहा हूँ। उसके द्वारा मैंने तमाम लोगों को जॉब भी प्रोवाइड किया है और साथ ही साथ 4 लोग मेरे साथ जुड़ के, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो कि मेरे अंडर में कार्य भी कर रहे हैं।
जी, यानी अपनी जीविकोपार्जन चला रहे हैं।
बिल्कुल,
ये अच्छी बात कही। लेकिन आपने जैसा कि मेंशन किया कि आपने 2 बार सीए भी अटेम्प्ट किया और निकाला।
हाँ, तो सीए के 2 ग्रुप्स निकाले हुए हैं।
2 ग्रुप्स निकाले हुए हैं। तब तक क्या आपका इरादा क्या पहले सीए बनने का ही था?
पहले था, मैंने सीए की ट्रेनिंग मिस्टर पवन अग्रवाल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट गोंडा में जो है उन्हीं के अंडर में हुई हुई है।
ओके ओके। हाँ। बाद में आपका इरादा लगा कि नहीं मुझे कुछ खुद का अपना काम, मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है अपना काम।
बिल्कुल,
ये बहुत अच्छी बात है। चूंकि आपने बताया कि आप एक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके पढ़ने का कोई तरीका आपने अपनाया होगा। आपका अप्रोच क्या था पढ़ाई को लेके, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त सुन रहे हो आपको, थोड़ा सा आपसे प्रेरणा लेके अपने डेफलो में उस तरह की चीज़ों को अप्लाई कर पाए, प्लीज बताइए।
मेरा पढ़ाई का जो पैटर्न था वो ये था कि जो भी मेरी पढ़ाई हुई है वो रेगुलर बेसिस पे मेरा रिविजन भी चलता रहे और कुछ नए कंटेंट भी मैं डेली पढ़ता रहूं। मेरा सुबह उठ के 4 से 7 तक रिवीजन और कुछ नए वर्किंग स्टार्ट होती थी। मैं पर डे सुबह 4 से 7 पढ़ाई करता था, दिन में जितने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते थे उन सब की पूरी तैयारी करता था।
अगर 4 बजे आप उठते थे तो सोते कब थे?
मैं शाम को 9:30 से 10 बजे तक सो जाता था। वही पैटर्न आज भी अपना रखा।
क्या बात है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने भी वाला था कि आज का क्या है, और आपने खैर पहले ही बता दिया। और ये एक स्टैंडर्ड है शायद आज के लोगों को, आज के ये यूथ हैं उनको सुन के थोड़ा ऐसा इमेजिनेशन हो रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, बट ये फैक्ट है। मतलब ये
हमारे फादर की देन है, हमारी दादी की देन थी। दादी का कहना था कहीं पे भी आप रहें शाम को 7 बजे घर आ जाएं। फालतू उनको टहलना पसंद नहीं था, जो कि आज मेरे द्वारा कभी भी, मतलब कोई एक्सेप्शनल केस होते हैं तभी मैं शाम को टहलता हूँ, नहीं तो अपने घर पे आ जाता हूँ। फैमिली को टाइम हमेशा देना चाहता हूँ।
बहुत अच्छी बात है। और ऐसा होता है कि बचपन में जो शिक्षा आपके मन में डाली जाती है वो जिंदगी भर आपके साथ में रहती है। आपने चूंकि बताया कि आप पढ़ाई में तेज थे और आपने पढ़ाई भी की, आज की अगर बात करें तो आज इंटरनेट का दौर है, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं नवीन जी जहाँ से बच्चे इजीली पढ़ लेते हैं। आपके टाइम पे तो नहीं था, आप उस टाइम कैसे मैनेज करते थे?
हमारे शुरू से ही जो टीचर्स मिले थे, मिस्टर मनमोहन लाल जी श्रीवास्तव जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी गाइडेंस मुझे इंटर में बहुत अच्छी मिली, जिनको मैं आज भी कहता हूँ कि उन्हीं की बदौलत मैं इतने आगे तक निकला हूँ। आज मैं GST का पूरा काम करता हूँ लोगों का पब्लिकली, और भी अन्य प्रकार के तमाम काम मैं कर भी रहा हूँ। ये मैंने उस प्रोफेशन को अभी छोड़ा नहीं है, उससे रिलेटेड भी रहा हूँ।
क्या बात है, मतलब
मैं
वो भी
आज भी ऑडिट भी करता हूँ, ये भी चल रहा है।
ये बहुत अच्छी बात है। तो मतलब मैं आपका क्या समझूं कि एक अच्छा टीचर मिलना आपके लिए, आपके ओपिनियन में कितना जरूरी है किसी बच्चे के लिए?
बिल्कुल, अगर आपको गाइडेंस, सही गाइडेंस अच्छी मिल जाए तो आपका फ्यूचर अच्छा जाने का लगभग आप मान के चलिए 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं भी कुछ बच्चों को गाइड करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, कोचिंग भी पढ़ाता हूँ कॉमर्स की, और हर साल, इस साल भी मेरा बेटा भी अभी टॉप किया है फातिमा में इंटर में।
कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो आपको।
थैंक यू। और लास्ट 5-6 साल से मैं जिन जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट सारे बच्चे, एक नहीं तो एक उसमें से बच्चा, अभी इस साल भी नारायणा स्कूल में भी एक लड़की है, उसने भी काफ़ी अच्छे स्कोर किए हैं, और हर साल काफ़ी बच्चे मतलब टॉप में ही रहते हैं, ऑलमोस्ट टॉपर्स में रहते हैं हमारे द्वारा गाइड किए हुए।
तो यानी जैसे आपके गुरुजनों ने आपको एक मार्गदर्शन दिया,
बिल्कुल
उसी तरह आप आने वाली पीढ़ी को आप दे रहे
हैं। मेरा प्रयास रहता है, मैं उनके बराबरी तो कभी जीवन में नहीं कर सकता हूँ मेरे हिसाब से, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा मैं उन बच्चों को प्रोवाइड करूँ और अच्छे से अच्छे मार्गदर्शन दे सकूँ, जिससे कि वो सही रास्ते पे चल सकें।
ये बहुत अच्छी बात है, और ये सोच भी सही है कि आप गुरुजन के बराबर तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आप न जाने कितनों की जिंदगी सवार पाते हैं सिर्फ किस लिए, क्योंकि आपको एक अच्छे गुरु मिले होते हैं।
बिल्कुल,
तो ये उनकी देन होती है। बात तो सही है। और अभी चूंकि हमने बताया था पहले कि हमारे बीच में नवीन दरगढ़ जी भी मौजूद हैं, जो कि सचिव महेश्वरी परिषद गोंडा के हैं, तो आइए अब उनके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। नवीन जी, आप भी अपने बारे में बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई।
जी, मेरी पैदाइश तो कानपुर नगर में हुई थी और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी कानपुर से प्रारंभिक किया और प्रोफेशनल शिक्षा भी मेरी कानपुर से ही पूरी हुई थी।
ओके, तो आपकी जो हायर स्टडी है वो क्या है?
एडवोकेट LLB मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से पास आउट किया था।
तो अभी क्या आप वकालत के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या?
जी, मैं इस समय प्रेजेंट वर्तमान में GST प्रैक्टिशनर के रूप में कार्यरत हूँ और अकाउंट से संबंधित सभी कर की सेवाएं देता हूँ।
तो अच्छी बात है आपने नाम लिया, GST का आपने नाम लिया। अभी GST जब से ये लागू किया गया है जी इंडिया में जी, उसके बाद से आप क्या देख रहे हैं लोगों में अभी इसको लेके कितनी जागरूकता आई है? मतलब आप कुछ केसेस तो देखते ही होंगे
जी, बिल्कुल।
एटलीस्ट गोंडा लेवल पे,
गोंडा लेवल पे मैं देख रहा हूँ कि GST जब से लगा है तब से उसके बाद से लोगों की सोच में, लोगों के कार्य प्रणाली में बहुत ही अंतर आया है, उनके व्यवहार में हर चीज में अंतर है और मैं इस चीज का स्वागत करता हूँ।
ओके, सो नवीन जी, एक बार आपकी फैमिली की तरफ भी हम बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, अपने माता पिता के बारे में बताइए और भाई बहन अभी आपके क्या कर रहे हैं?
मेरे माता पिता स्वर्गीय रमेश कुमार जी महेश्वरी कानपुर में थे, उनका देहांत लगभग 13 साल पहले पूर्व हो चुका है
जी,
और वो कपड़े के व्यवसाय से संबंध रखते थे। और मेरे एक बड़े भाई जो कंप्यूटर प्रोफेशनल है, IT प्रोफेशनल है, कानपुर में ही अपना सर्विसेज में अपना काम करते हैं।
तो नवीन जी, मुझे ये बताइए, पिताजी का बिजनेस था
जी,
तो एक विरासत पहले से मिली थी, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन भी था कि आप उस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने किया LLB
जी,
क्या वजह थी इसकी?
देखिए सर, शिक्षा ऐसी चीज है कि चाहे जितना इसमें आप पढ़ लीजिए, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जैसे कि नवीन टागर जी ने भी अपनी बताया, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अब चूंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी रह गई थी कि मुझे कानपुर से मुझे बाहर आना पड़ा, तो बस परिस्थितिवश।
ओके ओके, ठीक है, आपने बड़े भाई के बारे में बताया और आपने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया। आपका बचपना कैसे बीता, क्योंकि कानपुर के बच्चे भी काफी शरारती होते हैं सुना है?
नहीं, बचपन तो भैया बहुत बढ़िया बीता, तो आप अपनी अपनी बातें क्या बताएं, जैसा भी, जैसे और भी नॉर्मल बच्चों का।
नहीं, आज मौका मिला बताने का।
नहीं नहीं, जैसा
और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर शरारत नहीं तो फिर वो बचपन कैसा?
बिल्कुल,
हम सभी शरारती थे और अच्छी बात है।
बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे और बच्चों का जैसे शरारत हुआ, हम लोग हर चीज में, चूंकि अपने स्कूलिंग टाइम में सब चीजों का हमने लोग ने पूरा पूरा एंटरटेन किया, स्कूलिंग लाइफ हमने बहुत अच्छे से एंजॉय करी।
ये अच्छी बात है। देखिए, आपने अभी ये बोला था कि पिताजी का बिजनेस था
जी,
और शिक्षा के महत्व को आपने समझा, तो इसलिए LLB तक आ पाए
जी।
LLB ही क्यों चूज किया, क्योंकि आपके पास बहुत सारे और भी चीजों को करने के मौके थे?
चूंकि LLB ऐसी चीज थी, चूंकि मैं शुरुआत से कॉमर्स बैकग्राउंड का विद्यार्थी रहा हूँ, तो चूंकि कॉमर्स बैकग्राउंड के विद्यार्थियों के लिए जैसे कि या तो लॉ के क्षेत्र में अपना भविष्य निर्माण कर सकता है, या फिर चार्टेड अकाउंटेंट CA के क्षेत्र में, चूंकि चार्टेड अकाउंटेंट CA का क्षेत्र थोड़ा बहुत ही विस्तृत हो जाता है
जी,
और उसमें फिर बहुत सी चीजें आ जाती हैं, टाइम भी देना पड़ता है, स्टडी भी उसमें बहुत ज्यादा, मोर देन स्टडीज काफी हो जाती थी। चूंकि और ये ऐसा प्रोफेशन हो जाता है कि इसको आप अपने कार्य क्षेत्र के साथ साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं
जी। तो देखिए, अभी जो आप चूंकि वकालत कर रहे हैं वो GST के मुद्दे के साथ है, यानी बहुत सारे आपके पास GST के केसेस आते रहते होंगे।
बिल्कुल।
तो मान लीजिए अगर कोई हमारे श्रोतागढ़ में से अभी कोई सुन रहा हो और इस लाइन में वो भी आना चाह रहा हो, तो आप क्या बताना चाहेंगे, कितना स्कोप है
इस लाइन का? इतना स्कोप है कि मैं इसको बता नहीं सकता, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है, क्योंकि इसमें भी आज की डेट में भी अवेयरनेस की काफी कमी है, लोगों को इसकी जानकारी बहुत है, तो श्रोताओं से कहते हैं कि वो अपने आप को तैयार करें, जो आजकल के जो यंग जनरेशन जो आ रही है, जो अपने करियर अपॉर्चुनिटी की ओर देख रही है, तो मैं उनका स्वागत करूंगा कि अगर इस लाइन की ओर सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया लाइन है और इसमें फ्यूचर सिक्योर है, बस कोई भी काम अपने एक ऑनेस्टली तरीके से काम करा जाए तो हर बढ़िया है।
अगर कोई भी काम ऑनेस्टली किया जाए
तो हर काम
तो
बढ़िया
है, बेहतर है।
बिल्कुल।
और कहीं ना कहीं GST चूंकि जब से लागू हुआ है तो जाहिर सी बात है हर जगह मैंडेटरी है, सारे लेन देन में जो भी कॉमर्शियल काम होते हैं, तो कहीं ना कहीं स्कोप के बारे में नवीन जी ने, जैसा कि खुद वो एक लॉयर हैं, GST संबंधित मुकदमे देखते हैं, मामले देखते हैं, तो आपको भी यही सजेशन दे रहे हैं कि हाँ, अगर कोई भी इस लाइन में आना चाहता है, वकालत करना चाहता है, तो उनका स्वागत है और काफ़ी ज़्यादा स्कोप इसमें मौजूद है। अच्छा, इसी बीच चूंकि हमारे एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का टाइम भी हो चला है, तो अपने श्रोताओं से हम कहेंगे कि आप तीनों मेहमान से हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा, सुनते रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
जय महेश, माहेश्वरी हैं हम, माहेश्वरी हैं हम। शिव सत्य है, शिव ही है सुंदरम, शिव से है सारे है सब में शिवम। शिव सत्य है, शिव ही है सुंदरम, शिव से है सारे है सब में शिवम। शिव है पिता, शिव ही सखा, शिव के ही वंशज हैं हम। माहेश्वरी हैं हम, 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 माहेश्वरी हैं हम। धोरा धरती का मान बढ़ाया, देखो कण कण में नाम है छाया। धोरा धरती का मान बढ़ाया, देखो कण कण में नाम है छाया। कोई बैर नहीं, मन में भेद नहीं, चले पश्चिम से हर दिश कदम।
माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम।
नारी शक्ति ने साहस दिखाया और युवाओं में जोश जगाया। नारी शक्ति ने साहस दिखाया और युवाओं में जोश जगाया। शिक्षा दर है बढ़ी, बेटी घर घर पढ़ी, संस्कृति से जुड़े हर कर्म। आओ सपनों को सच कर दिखाएं, सुर में सरगम जो रिश्ते सजाएं। आओ सपनों को सच कर दिखाएं, सुर में सरगम जो रिश्ते सजाएं। नेक उज्जवल हो मन, प्रेम ही हो धर्म, खिलखिलाए यूं अपना चमन।
माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम।
शिव सत्य है, शिव ही है सुंदरम, शिव से है सारे है सब में शिवम। शिव है पिता, शिव ही सखा, शिव के ही वंशज हैं हम। माहेश्वरी हैं हम, माहेश्वरी हैं हम, माहेश्वरी हैं हम, माहेश्वरी हैं हम। माहेश्वरी हैं हम, माहेश्वरी हैं हम, माहेश्वरी हैं हम, माहेश्वरी हैं हम।
सभी माहेश्वरी परिजनों को आलोक डागा का जय महेश।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ। आपके अपने वाले स्टूडियो में शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। तो सबसे पहले चूंकि अभी तक हमने अपने तीनों गेस्ट की लाइफ से जुड़े हुए कई सारे सवाल किए जिसका बखूबी उन्होंने आंसर दिया और काफी ज्यादा इंस्पायरिंग रहा हमारे लिए, सो आइए चलते हैं आज के अहम मुद्दे पर, क्योंकि आज है महेश नवमी और इसी उपलक्ष्य पे हमारे ये तीनों खास मेहमान आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि महेश नवमी है क्या, प्लीज बताएं हमें नवीन दरगढ़ जी।
रेडियो एफएम सुनने वाले सभी श्रोतागण को जय महेश। महेश नवमी से संबंधित कथा इस प्रकार है, जैसे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि जो कि महेश नवमी कहलाती है, इस दिन ये दिन महेश्वरियों के लिए बहुत खास होता है क्योंकि ये महेश्वरी वंशोत्पत्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो शंकर पार्वती की कथा से संबंधित त्यौहार से संबंधित बहुत सी कथाएं हैं, चूंकि महेश नवमी का त्यौहार हम लोग के लिए बहुत खास है क्योंकि भगवान शिव, इस दिन भगवान शिव की महेश स्वरूप में वंदना की जाती है। भगवान शिव का महेश स्वरूप इस प्रकार है, भगवान महेश एक कमल पुष्प एक लिंग के रूप में विराजमान है। इस स्वरूप में भगवान महेश के स्वरूप के साथ साथ डमरू त्रिशूल बेलपत्र व त्रिपुंड को दर्शाया गया है। पृथ्वी से ऊपर कमल के पुष्प पे भगवान महेश का जो स्वरूप दर्शाया गया, इसका ये कि भगवान महेश सभी सीमाओं से परे हैं, अर्थात इनको कोई किसी प्रकार की कोई सीमाएं बांध नहीं सकती और वह सभी सीमाओं से परे हैं। बेलपत्र की तीनों पत्तियों जो महेश्वरी समाज के तीन स्तंभ कहे जाते हैं, सेवा त्याग सदाचार, उनको दर्शाता है
जी। तो ये आपने बताया कि ये उत्पत्ति इसकी कैसे हुई, इसी में मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगा ललित सोमानी जी, आप बताएं।
उत्पत्ति दिवस के ऊपर में ये कहा गया है कि भगवान महेश के द्वारा जो हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान हुआ उसी के आधार पे ये महेश नवमी मनाई जाती है। उन्हीं के माध्यम से हमारे पूर्वज लोगों को आशीर्वाद मिला, उसी के अनुसार ये हम लोग महेश नवमी मनाते हैं। चूँकि महेश भगवान महेश और उमा पार्वती जी के द्वारा हम लोगों को श्राप मुक्त करवाया गया था हमारे पूर्वजों को, उसी कारण आज के दिन हम लोग ये महेश नवमी मनाते हैं।
अच्छा, तो सिंपली आपका मतलब ये कहना है कि आज ही के दिन चूंकि श्राप मुक्त किया गया था उसी उपलक्ष में, यानी आज के दिन को आप महेश नवमी के रूप में मनाते हैं।
हाँ जी।
और ये आपका एक त्योहार है।
हाँ जी।
ठीक है जी, ये बताइए कि इस त्योहार पे आप इसको सेलिब्रेट कैसे करते हैं।
इस त्यौहार पे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं और बड़े को आदर सत्कार होता है और जो बच्चे लोग हैं उनको भी तरह तरह के खेल कूद की प्रतियोगिता में उनको आयोजन किया जाता है ताकि वो लोग उसका फायदा उठा सकें
जी। इसको लेके मैं आपसे भी जानना चाहूँगा नवीन डागा जी कि इस खेल के उपलक्ष्य में इस त्यौहार पे क्या क्या आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं।
देखिए, इस त्यौहार पे हमारे द्वारा कई कार्यक्रम किए जाते हैं। शुरुआत हमारे द्वारा रुद्राभिषेक के द्वारा किया जाता है और उसका प्रसाद सभी को ग्रहण कराया जाता है। उसके बाद तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, महिलाओं द्वारा बढ़ चढ़ कर उसमें सहयोग दिया जाता है, छोटे बच्चे और बड़े सभी के द्वारा उसमें सहयोग किया जाता है। छोटों का भी कई प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, उनके तमाम प्रकार की अन्य गतिविधियां, जैसे कोई कला उसके अंदर है तो उसकी प्रस्तुति वो उसके द्वारा की जाती है। उसके बाद उन लोगों को पुरस्कार वितरण सभी बच्चों को समान रूप से दिया जाता है कि प्रोत्साहन बना रहे, सभी बच्चों को पुरस्कार भी दिया जाता है। उसके अलावा जो भी समाज के बड़े बुजुर्ग हैं उन सबका आशीष प्रदान, हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, उनको सम्मान देके हम लोग आशीर्वाद ग्रहण करते हैं उनके द्वारा। बड़ों के द्वारा भी तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अंत में सभी को प्रीतिभोज कराया जाता है, सभी के द्वारा मिलके एक दूसरे के सहयोग से ये कार्यक्रम होते हैं और उसके बाद सभी कोई अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं।
यानी आपके कहने का मतलब है इसमें धार्मिक रीति रिवाज के साथ साथ आप सामाजिक पहलुओं को लेकर भी चलते हैं, जिसमें आपने बताया प्रतियोगिताएं कराते हैं, फिर बच्चों को अप्रिशिएट भी किया जाता है।
बिल्कुल किया जाता है।
तो ये आप अपने समाज के बीच में करते हैं?
बिल्कुल करते हैं। कोई बच्चे के अंदर कोई जितने भी उसके अंदर क्षमताएं हैं उन सबको सामने प्रदर्शन किया जाता है, सबको प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों में हिचक दूर होती है, जिससे वो भविष्य में उनके लिए फ़ायदा भी करता है इस प्रकार की स्टेज पर आके कार्यक्रम को प्रस्तुत करने पर।
ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों का एप्रिसिएशन शायद ऐसे ही होता है, उनमें प्रतियोगिता करा करके कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा की एक भावना आती है, और उसके बाद जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और वो जाहिर सी बात है वो समाज के लिए बहुत बेहतरी का काम कर सकने के लिए एक योग्य हो जाते हैं। ये बहुत सही बात है। अच्छा, चूंकि अब हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने समाज की बात की, तो समाज में किन किन क्षेत्रों में आपके समाज के लोग कहाँ कहाँ योगदान दे रहे हैं?
देखिए, हमारे समाज के लोगों में जैसे हर इंसान ने बिड़ला शब्द सुना होगा
जी,
वो शुरू से भारत देश के लिए अर्थ क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देते आए हैं। भारत के टॉप मोस्ट में से जैसे टाटा और बिड़ला दो नाम हमेशा से गिनते आए गए हैं, उनमें से बिड़ला भी हमारे उसी महेश्वरी परिवार के ही सदस्य में हैं, जिनके यहाँ जिन्होंने तमाम हर समाज को सहयोग प्रदान किया है, पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर सहयोग प्रदान किया है, देश को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास किया है। उसके अलावा कई अन्य लोग भी हैं जो कि बढ़ चढ़कर सहयोग किया है
जी। तो इसी विषय में मैं नवीन दरगढ़ जी आपसे पूछना चाहूंगा कि समाज के किन किन क्षेत्रों में आपके समाज के लोग उसमें योगदान दे रहे हैं?
यूँ तो जैसे महेश्वरी समाज की संख्या बहुत कम है, फिर भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के धर्म परायणता के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा और व्यवसाय के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर रहकर भी मानस पटल पर हमने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। जैसे कि अभी डागा जी ने जैसे बताया था कि बिरला जी का नाम लिया, उसकी उसी कड़ी में मैं कुछ नाम और भी आपको बता सकता हूँ, जैसे कुमार मंगलम बिरला जी, किशोर बियानी जी, राधा किशन दम्बानी जी, राहुल बजाज जी ने उद्योग क्षेत्र में अपना परचम लहराया, और इसी के से केवल उद्योग क्षेत्र तक ही सीमित ना रह करके राजनीतिक क्षेत्र में भी आ जाए। इस समय वर्तमान में लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी, किरण महेश्वरी जी ने राजनीतिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व लहराया। न्यायपालिका क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इस समय हमारे न्यायमूर्ति स्वर्गीय श्री आर सी लाहौटी जी, जितेंद्र महेश्वरी जी, दिलीप महेश्वरी जी ने न्यायपालिका क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम किया। तथा खेल जगत की अगर हम बात करते हैं तो खेल जगत में हमारे इस समय वुमेन महिला क्रिकेट टीम की इस समय जो खिलाड़ी है स्मृति मंधाना, जो आजकल किसी परचय की मोहताज नहीं है, उन्होंने खेल जगत में परचम लहराया। और शिक्षा के क्षेत्र में अशोक महेश्वरी जी, आनंद महेश्वरी जी, जो कोटा में एलन इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं, उन्होंने भी काफ़ी बढ़ चढ़ करके समाज के लिए अपनी योगदान दिया।
आपकी बात ज़्यादातर एक ऐसे नाम आए हैं जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहीं ना कहीं आपके समाज में क्या एक बिजनेस का एक अहम रोल है जी? तो इस विषय में नवीन डागा जी आप क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, चूंकि हम वैश्य समाज से आते हैं, वैश्य समाज में अधिकतर व्यापार से संबंधित ही रहता है, ठीक है। हमने अपना जो पुरातत्व देखा है, पुराने समय से देखते आए हैं, उसी चलन को हम आगे भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर हर कोई रोजगार ही देखेगा तो रोजगार देगा कौन? तो रोजगार देने का अवसर प्रदान करने के लिए भी तो किसी को होना चाहिए। तो वैश्य समाज ने इसका जिम्मा ले रखा है, और वो खास करके कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा करें, जिससे कि अन्य समाज के सभी लोगों को रोजगार भी दिया जा सके।
यानी आपने एक कॉन्सेप्ट तो ये बताया कि भाई रोजगार देने वाला भी कोई होना चाहिए, इस वजह से आप बिजनेस में ज्यादा, और साथ ही साथ आपने बाकी जगह का भी एग्जांपल दिया है कि अगर जैसे किसी को कोई अपनी पर्सनल रुचि है तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि उसको बिजनेस में ही जाना है, वो किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। क्या मैं सही हूँ?
जी हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ खेल क्षेत्र में भी है, ऐसा नहीं है कि महिलाओं पे प्रतिबंध है, खेल क्षेत्र में भी देखिए स्मृति मंधाना जी हैं, हमारे यहाँ संदीप महेश्वरी जी मोटिवेशनल स्पीच में आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, लगभग सभी सुनते हैं उनको, इतने अच्छी मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। कई अच्छी अच्छी नई नई जानकारियां देते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारे यहाँ कोई ऐसा बंधन नहीं है कि आप जॉब नहीं कर सकते हैं। आप जॉब भी कर सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट जॉब में है वो जॉब भी कर सकता है, जिसका इंटरेस्ट व्यापार क्षेत्र में है वो कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर व्यापार क्षेत्र में इंटरेस्ट दिखाते हैं, रुचि करते हैं। हमारे यहाँ के बच्चों के अंदर ये अक्सर पाया गया है कि अगर पढ़ाई में भी अच्छे हैं तो भी वो चाहते हैं कि हम अपना व्यापार, कुछ नया व्यापार करें, कुछ नई सोच लाएं, कुछ आगे बढ़ाने की प्रयास करते हैं। ये चलता रहता है हमारे समाज के अंतर्गत।
ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि किस तरह से आप बिजनेस को भी सपोर्ट करते हैं और उसके साथ ही किसी की अगर अपनी रुचि होती है कोडिंग भी वो अपना काम करते हैं। अभी जब हमने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था तो सबसे पहले जैसे हमने ललित सोमानी जी आपके बारे में बताया था कि आप पूर्व उप सचिव रह चुके हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश महेश्वरी सभा के। पहली बात तो आप इस संस्था के बारे में बताएं।
महेश्वरी परिषद गोंडा जो संस्था है 1975 से समाज सेवा में लगी हुई है और उस समय के जो पदाधिकारी थे, जो स्तंभ थे समाज के, वो थे श्री सत्यनारायण जी सोमानी, श्री राजेंद्र जी भुराड़िया, श्री निहाल चंद जी सिंघी, श्री मदन लाल जी सोमानी। इन लोगों ने भरसक जो इसका प्रयास किया और इस संस्था को जो इतने दिन तक इसको संभाले। इसके बाद में जो है हम लोगों ने इसका सहयोग किया, हम लोग संभाले और संभालने के बाद में आज ये हम लोगों ने यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश महेश्वरी महासभा का एक मीटिंग भी करवाई गई थी जो कि सक्रिय रही। इसके बीच बीच में हम लोग जो है इसमें सामाजिक गतिविधियाँ जो कि महासभा से संबंधित होती है या पूर्वी उत्तर प्रदेश महासभा से संबंधित होती है उसमें हम लोग सब लोग मिल करके इसमें सहयोग उनका करते हैं। चूँकि हम लोग अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा से जुड़े हुए हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश महेश्वरी समाज से जुड़े हुए हैं, इसको इसमें उनके द्वारा जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनको हम लोग प्रस्तुत उसमें सहयोग प्रदान करते हैं।
जी धन्यवाद, आपने बताया। और साथ ही साथ चूँकि जब हमने इंट्रोड्यूस कराया था नवीन डागा जी को और नवीन दरगर जी को, तो आपने जैसे आपके बारे में हमने बताया था, नवीन डागा जी आप अर्थ मंत्री हैं महेश्वरी परिषद गोंडा के, नवीन दरगर जी आप हैं सचिव महेश्वरी परिषद गोंडा। ये महेश्वरी परिषद गोंडा क्या है, इस संस्था के बारे में बताएं।
महेश्वरी परिषद गोंडा हमारे समाज में लगभग 17 परिवार हैं गोंडा में
जी,
जिन्होंने सबने सहयोग करके एक परिषद बनाया। इस परिषद को स्टार्टिंग में बनाया गया और पूरा संचालन का काम, मतलब अच्छे से मैनेज करने का काम, मैं श्री ललित जी सोमानी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं इनको देना चाहता हूँ। इन्होंने पूरा जितना शुरुआत की सक्रियता होनी चाहिए थी एक इंसान के अंदर, इन्होंने उससे ज़्यादा बढ़कर उसमें सहयोग किया और लोगों के अंदर भावना जागृत की कि सेवा सदाचार हमारे उसमें आता है, हमें वो करना है, और वो सहयोग की भावना हम लोगों के अंदर जागृत की, जिसके कारण वो समाज आज तक बढ़ चढ़ के सामाजिक सरोकार करने में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है।
ओके, नवीन दरगर जी आपने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया था, आपने कहा था 3 स्तंभ होते हैं, कौन से?
सेवा त्याग सदाचार।
सेवा त्याग सदाचार
जी,
किस तरह से आप या आपका समाज इसको फॉलो करते हैं?
सेवा त्याग सदाचार की परिभाषा को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि जैसे सेवा का अर्थ है कि यदि हमें कोई कार्य करने को मौका मिला कि हमने अपने समाज के लिए हमने क्या सेवाएं दी, समाज के लिए जो हम सेवाएं देंगे वही चीज हमारे पास रिवर्स होकर के आएगी। तो सेवाओं का अर्थ तो वो है कि हमें समाज के लिए क्या देना है, प्रभु ने हमें इस लायक बनाया तो हमें अपनी सेवाएं देनी चाहिए। और त्याग परिभाषा बहुत बड़ी गई है कि बढ़ चढ़ करके बताई गई है कि बिना त्याग करके कोई भी कार्य को आगे, अगर हमें कुछ भी किसी भी कोई भी प्रकार का अचीवमेंट पाना है तो हमें सेक्रीफाइस अर्थात त्याग को करना ही पड़ेगा। त्याग हम विभिन्न विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि एक विद्यार्थी के लिए कि विद्यार्थी को जैसे अगर आगे कुछ बढ़ना है
जी जी,
जैसे किसी विद्यार्थी को आगे बढ़ना है तो उसे बहुत अपनी बहुत सी चीज़ों के लिए त्याग करना पड़ेगा। एक पेशेवर व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है तो उसे अपनी बहुत सी चीज़ों के लिए अपनी खुशियों को या अपनी बहुत सी चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा। तो त्याग की परिभाषा व्याख्या तो बहुत विस्तृत बहुत तरह से की जा सकती है। और सदाचार तो ये एक हर मनुष्य में इसका गुण होना चाहिए, सदाचार का, कि मैं हमें किस किसी व्यक्ति के साथ किस तरह से हमें प्रस्तुत करना है, किस तरह से मिलना है, उसके लिए क्या हमारा भाव होना चाहिए, ये हमारे दर्शाता सदाचार को।
तो ललित सुमानी जी, जो नवीन दड़गर जी ने बताया, कहीं ना कहीं एक वो एक अच्छा इंसान बनने की शायद एक पूरी निशानी है, जिसे कह सकते हैं कि एक समाज में रहने के लिए एक परफेक्ट इंसान। आपका क्या मानना है ललित सुमानी जी?
इसमें मानना ये है कि जो समाज का एक स्तंभ जो बना हुआ है, सेवा, त्याग और सदाचार, इसमें जो है इसी की भावना को रखते हुए हम लोग सब मिल करके समाज के प्रति अपना योगदान देते हैं, ताकि समाज और सामाजिक गतिविधियां ठीक से चलती रहे और किसी को कोई परेशानी ना हो। यदि कोई निम्न तबके का है या जीवन याचिका ठीक से नहीं चल रही है तो उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। हमारे समाज के अलावा भी जो भी सामाजिक गतिविधियां होती है अन्य समाज के लिए भी हम लोग बढ़ चढ़ के योगदान देते हैं। कोरोना काल में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के प्रयास किया और सबको जोड़ने की चेष्टा की, किसी की कोई कमी थी उस कमी को हम लोगों ने मिल कर के पूरा किया और उसको एज ए समाज सेवा के रूप में हम लोगों ने समाज में प्रस्तुत किया।
जी, तो बिल्कुल सही आपने बताया, कहीं ना कहीं जो आपके तीन स्तंभ हैं, सेवा, त्याग और सदाचार, इसको आप पूरी तरह से फॉलो करने की हमेशा कोशिश में रहता है ये समाज। और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, आप जब आए थे तो आपने बहुत सारे समाज सेवा के कार्यों को बताया था, जो कि अभी हम आपसे उसी बात पे मुद्दे पे आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आप सेवा या समाज कार्य में क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी हमारे छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो चला है, तो अपने हम श्रोताओं से कहेंगे कि मिलते हैं इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
आँखों में चमक जिनके दिल में करुणा है भरी, आँखों में चमक जिनके दिल में करुणा है भरी, महादेव की कृपा से बने हैं महेश्वरी, महादेव की कृपा से बने हैं महेश्वरी। छोड़ अहिंसा का पथ चुना, संघर्ष के धागों में जिसने स्वयं को बुना, संघर्ष के धागों में जिसने स्वयं को बुना, भारत की उन्नति में, भारत की उन्नति में जिनकी भूमिका बड़ी, भारत की उन्नति में जिनकी भूमिका बड़ी, महादेव की कृपा से बने हैं महेश्वरी, महादेव की कृपा से बने हैं महेश्वरी। घरों में लक्ष्मी का नित्य निवास है, जो उंगलियों पे करते सारा हिसाब है, जो उंगलियों पे करते सारा हिसाब है, हाथों में जिनके धर्म की, हाथों में जिनके धर्म की ध्वजा लहर रही, हाथों में जिनके धर्म की ध्वजा लहर रही, महादेव की कृपा से बने हैं महेश्वरी, महादेव की कृपा से बने हैं महेश्वरी। जिनके संस्कार है भरे पड़े, जिह्वा भी जिनकी जैसे कृष्ण बोलती रहे, जिह्वा भी जिनकी जैसे कृष्ण बोलती रहे। कांधे जनेऊ और शिखा, कांधे जनेऊ और शिखा माथे पे है श्री, कांधे जनेऊ और शिखा माथे पे है श्री। महादेव की कृपा से बने हैं महेश्वरी, महादेव की कृपा से बने हैं महेश्वरी। के कोने कोने में जिनका मुकाम है, अपनी परंपराओं का जिनको गुमान है, अपनी परंपराओं का जिनको गुमान है। अनिरुद्ध दूनी वाले ने, अनिरुद्ध दूनी वाले ने जोड़ी है ये कड़ी, अनिरुद्ध दूनी वाले ने जोड़ी है ये कड़ी। महादेव की कृपा से बने हैं महेश्वरी, महादेव की कृपा से बने हैं महेश्वरी। आँखों में चमक जिनके दिल में करुणा है भरी, आँखों में चमक जिनके दिल में करुणा है भरी। महादेव की कृपा से बने हैं महेश्वरी, महादेव की कृपा से बने हैं महेश्वरी। महादेव की कृपा से बने हैं महेश्वरी, महादेव की कृपा से बने हैं महेश्वरी।
एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का स्वागत करता है, आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो आइए फिर से एक बार हम बातचीत का दौर जारी रखते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा नवीन डागा जी, आपने बताया था तीन होते हैं पिलर्स, सेवा, त्याग और सदाचार। तो सबसे पहला जो लफ्ज है वो है सेवा, और मैं अब इसी पे बात करना चाहता हूँ। तो जहाँ बात आती है सेवा की यानी सामाजिक कार्य, तो वहाँ आपके अगर हम समाज की बात करें गोंडा में, तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए कि आप किन किन सामाजिक कार्यों में आप लोग रहते हैं।
हाँ, जैसे कि गर्मी के समय में काफ़ी ज़्यादा गर्मी कई बार पड़ती है, तो उस समय हमारे महिला मंडली द्वारा ठंडाई और शरबत का वितरण का कार्य किया जाता है। कई बार अलग अलग जगह कैंप लगाकर इस कार्य को किया गया है, कभी ये बस अड्डे पे किया गया है, कभी अन्य स्थलों पर किया गया है। उसी के साथ साथ कई बार हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया गया है, जिसमें कि केवल हमारे समाज नहीं अन्य सभी वर्गों के लिए ये हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया था। कोई भी आके फ्री में उस हेल्थ चेकअप कैंप का फ़ायदा उठा सकता था, और उसको कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसकी जानकारी भी उसको दे दी जाती थी उसके द्वारा। उसके अलावा कई बार दुर्गा पूजा या अन्य जो त्यौहार होते हैं उस पर कभी चाय के वितरण का कार्यक्रम किया गया है, साथ में कुछ नाश्ते का, कुछ फुटकर इस टाइप के आइटमों के वितरण का कार्यक्रम किया गया था। हमारे संस्था द्वारा ये सारा कार्यक्रम समाज के प्रति समर्पित किया गया है। साथ ही साथ कई बार गौशाला में चारा देने का कार्य हमारी महिला मंडली द्वारा किया गया है। अन्य वृद्धा आश्रम या अन्य अनाथ आश्रमों में जाके बच्चों को और वृद्धों को कपड़े या अन्य सुविधाएं दान दी गई हैं, देने का प्रयास किया गया है। तो इस टाइप से तमाम प्रकार की सुविधाएं हमारे समाज द्वारा कई बार की गई है, जो कोई वर्ग विशेष को ध्यान में रख के नहीं की जाती है, समाज के हर वर्ग को ध्यान में रख के की जाती है। जिसे भी ज़रूरत है उन सबको ये करने की कोशिश की जाती है। वही जो हमारे तीन स्तंभ हैं उसमें से सेवा इसी के अंतर्गत आती है। और त्याग मतलब कि हम उससे कुछ पाने का, कुछ अर्जित करने का हम कुछ नहीं सोचते हैं, हम निशुल्क निस्वार्थ भाव से इस कार्य को करने का प्रयास करते हैं।
ठीक है, आपने कहा निशुल्क और निस्वार्थ भाव से इस काम को करने का पूरी कोशिश करते हैं। अभी जस्ट कुछ ही समय पहले हम सभी लोगों ने एक बहुत बड़ी आपदा झेली थी, जिसे हम सभी लोग जानते हैं, कोरोना महामारी। उस वक्त कहीं ना कहीं इंसानियत खतरे में पड़ गई थी, हर इंसान डरा हुआ था और न जाने कितना ज़्यादा हाहाकार मच गया था। ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे थे, खाने की प्रॉब्लम्स थी, जो दिहाड़ी मजदूर हैं बहुत परेशान थे। तो बहुत सी संस्थाओं ने, बहुत से समाज के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। नवीन दरगढ़ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उस दौरान आपके समाज ने क्या किया।
इस दौरान हमारे समाज ने नीडी पर्सन को, अगर कोई को फाइंड आउट करके, को ढूंढ करके, अगर उसके अलावा किसी उसको किसी प्रकार की कोई सामग्री की आवश्यकता है तो उसको आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको सामग्री पहुंचाना, और यदि उसे को किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी की कोई रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी उसको सेवाएं देना, और मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर की भी आपूर्ति कराना, ये हम लोग के समाज ने, महेश्वरी परिषद ने समय समय पर किया है।
आपने मास्क और ऑक्सीजन,
मास्क और ऑक्सीजन के लिए किया है, और हम लोग ने एक अपनी एक नंबर भी एक उस समय प्रचार में किया गया था कि अगर किसी को किसी प्रकार की कोई जरूरत है तो इन नंबरों पे संपर्क कर सकता है।
बिल्कुल,
तो उसके माध्यम से बहुतों को भी इस प्रकार की सहायता दी गई।
जी, क्योंकि उस वक्त कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी।
बिल्कुल,
और वो आपने उस पर काम किया, साथ ही साथ मास्क बहुत बड़ा हथियार था।
जी,
और शायद अभी भी है,
अभी भी हथियार है।
तो उसमें भी आपने अपना पूरा सहयोग दिया।
जी
ललित सुमानी जी, अभी तक बात हुई सामाजिक सेवा कार्यों की, समाज के बारे में। समाज मुझे लगता है, या दुनिया जो बनती है वो दो लोगों से मिलके बनती है, यानी पुरुष और महिला। तो आपके समाज में ललित सुमानी जी, महिलाओं का क्या योगदान है, आप कितना उनको बराबरी का भागीदारी सुनिश्चित करते हैं उनकी, और कहाँ कहाँ महिलाएं आगे फ्रंट पे आके काम कर रही हैं?
यहाँ महेश्वरी समाज की महिलाएं हर बढ़ चढ़ के हर कार्यक्रम में योगदान देती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कैंप लगाना हो या और भी कोई अन्य सामाजिक गतिविधियों में महेश्वरी महिलाएं जो हैं अपना योगदान प्रदान करती हैं।
आपने कहा कि महिलाएं जो हैं वो अपना योगदान प्रदान करती हैं। नवीन दरगढ़ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या महिलाओं की भी, जैसे आपकी एक अपनी शाखा है, अपनी एक ब्रांच है, क्या महिलाओं के लिए भी एक अलग से कोई ब्रांच का इंतज़ाम है जिसमें वो खुद ही एक लीडर हो और बाकी महिलाओं के अंडर में पूरी टीम चलती हो और काम करती हो, प्लीज बताएं।
जी बिल्कुल, जैसे अपने गोंडा महेश्वरी परिषद में जैसे हम लोग के एक पुरुष प्रधान, जैसे उसमें एक संस्था चल रही है महेश्वरी परिषद, ऐसे ही महिलाओं की भी एक संस्था चल रही है महेश्वरी महिला संगठन। इसमें महिला संगठन के मतलब है महिलाओं भी एक संगठित होकर के अगर किसी कोई भी एक सामाजिक कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यदि किसी को किसी प्रकार की कोई सामाजिक कोई गतिविधियां या कुछ एक्टिविटी लगी तो वो भी अपने स्तर से, हर महिलाएं स्वतंत्र हैं, हर महिला अपने स्तर से जो भी चीज़ें हैं आपस में बैठ करके उस पर मंथन करती हैं, उसके बाद अगर उसको जो आवश्यक लोगों हैं उन तक पहुंचाया जाता है।
जी, तो नवीन डागा जी, एक चीज़ तो ये बात हुई, दूसरी बात ये कि क्या अपने जो आप बताया कि एक महिला शाखा है
जी,
उसमें मेंबर कौन कौन हैं उनके बारे में बताएंगे?
जी हाँ, गोंडा में महेश्वरी महिला संगठन जो बना हुआ है उसमें इस वक्त तत्कालीन जो हैं श्रीमती शोभना सिंघी जी हैं जो कि उसकी अध्यक्षा हैं, श्रीमती प्रीति डागा हैं वो मंत्री हैं, और श्रीमती भावना सोमानी जी हैं वो कोषाध्यक्ष हैं। इन तीनों के द्वारा ही इस वक्त संस्था का संचालन किया जा रहा है, ये तीनों पद पे आसीन हैं। बाकी पुरानी जितनी भी महिलाएं हैं जो पहले पद पे थी उनका पूरा सहयोग और आशीर्वाद इन तीनों को प्रदान है, इसी वजह से इन लोग कार्य ढंग से कर भी पा रही हैं।
ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा आप दोनों ही शाखाओं के लिए है कि ये कोई सहमति से होता है या कोई चुनाव होता है, कैसे आप चूज करते हैं कौन किस पद पे रहेगा?
जी हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये हमारे यहाँ सबकी सहमति से एक चुनाव होता है, जिसमें ऑलमोस्ट सर्व सहमति बनती है, जिस भी सहमति से जिसको भी जो पद के लिए सहमति बनती है उसको वो पद प्रदान कर दिया जाता है, और सबकी सहमति से ये 3 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है।
बिल्कुल, तो आपने मेरे अगले शायद क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे दिया कि 3 साल मैं ये पूछने वाला था ड्यूरेशन क्या होता है। लेकिन नवीन डागा जी, एक बात मुझे ऐसी लगती है कि जो आप सामाजिक सेवा करते हैं उसका बहुत बड़ा मोल होता है, नो डाउट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सबसे जो अहम बात होती है वो होती है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप पर्सनली कुछ करते हैं या आपकी संस्था कुछ करती है तो प्लीज उसके बारे में बताएं।
देखिए, हमारी संस्था भी प्रयास पूरा पूरा करती है, जैसे कि अगर किसी को शिक्षा लेनी होती है और कुछ अगर भविष्य की कुछ कैरियर से रिलेटेड भी जानकारियां लेनी होती है तो समाज में जो भी जानकार व्यक्ति हैं उनके पास उनको भेजा जाता है और वो उनको भविष्य के उनके कैरियर की पूरी जानकारियां देते हैं, जिसे कैरियर कंसल्टेंसी भी कहा जा सकता है। साथ ही साथ मेरे पर्सनली अगर कहें तो मैं पर्सनली एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ जिसमें कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाती है और अन्य प्रकार की कोचिंग की भी सुविधा दी जाती है जो इंटर तक के सभी बच्चों के लिए होती है, इवन बीकॉम तक के बच्चों के लिए होती है, 0 लेवल से लेके। उसके अलावा कई अलग एक्टिविटी जैसे समर कैंप वगैरह इस वक्त चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों के लिए किया गया है, क्लास 8 तक के बच्चों को, उनको तमाम प्रकार की एक्टिविटीज़ उनको कराई जा रही है। उसमें इसमें जो सक्षम है वो पैसे को भुगतान करके करता है और जो सक्षम नहीं है उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये सारा कार्य कराते हैं। और तमाम प्रकार के जो जॉब वगैरह होते हैं वो कोशिश हमारे द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा, चाहे हमारी महेश्वरी परिषद हो चाहे मेरे पर्सनली जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा तमाम लोगों को रोजगार प्रदान भी किया गया है। और मैं आपके माध्यम से ये सभी को बताना चाहता हूँ, अगर किसी को कभी भी कोई ज़रूरत हो जॉब की वो हमसे आके संपर्क कर सकता है एनडी कंप्यूटर सेंटर पे आवास विकास कॉलोनी में, और अगर वो उस लायक होगा तो उसको हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि उसको जॉब प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। हम गोंडा लोकल में भी उनको जॉब प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट इस वक्त मेरे द्वारा कम से कम कुछ नहीं तो 250 से 300 बच्चों को लगवाया जा चुका है जॉब में।
आपने एक नंबर ही बताया कि कितने लगभग बच्चों की आपने हेल्प की है, और साथ ही साथ बताया कि इस तरह से कंप्यूटर जो कि इंस्टीट्यूट है आपका, तो टेक्निकल नॉलेज में आप बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। नवीन दरगढ़ जी, आप खुद एक एडवोकेट हैं और आप GST संबंधित मामले देखते हैं
जी,
इससे रिलेटेड भी क्या आपके पास कुछ लोग आते हैं, क्या आप भी उनकी हेल्प करते हैं अगर कोई इस लाइन में आना चाहता है, आपसे संपर्क करता है?
जी बिल्कुल, हेल्प होती है। अब जैसे कि नवीन डागा जी ने बताया था कि जैसे जो बच्चे कंप्यूटर सीख करके अब किसी जॉब के लिए प्लेसमेंट है, चूँकि अब हमारा क्षेत्र ऐसा होता है कि GST केवल एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से तमाम तरह के क्लाइंट्स होते हैं, तो उनको उस जगह पे किसी आवश्यक बच्चे को अगर उसकी सही जगह पे पहुंचाना, जैसे भैया के यहाँ से कोई बच्चे निकल के आए हैं, अब उनको जॉब क्या है, और हम भी चूँकि जगह जगह जाते हैं, एक मतलब फ्रीलांसर वाला काम जिस तरह से कहा जाता है वहाँ जाते हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट अगर हुई, उनको अगर किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत हुई तो उसको उस हिसाब से सेट करके किया जाता है।
यानी पर्सनल लेवल पे जैसे भी आप कर सकते हैं कोलैबोरेशन में, एक तो पहली बात है कि एक पार्ट होता है कि उनको स्किल्ड करना
जी,
तो पहले तो आप स्किल्ड करते हैं, फिर दूसरी बात होता है कि उनका कहीं सही जगह उनको पहुंचाना, यानी जॉब या रोजगार से
संबंधित।
तो पर्सनली आपके जो पर्सनल कॉन्टेक्ट होते होंगे या जहाँ पे आप प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ जाते हैं लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते वहाँ पे हेल्प करते हैं, मतलब जहाँ पे भी आप ब्रिज बन सकते हैं वहाँ आपकी पूरी कोशिश होती है। ये बहुत अच्छी बात है। और आप तीनों मेहमान चुकी हमारे स्टूडियो में आए, ललित सोमानी जी, नवीन डागा जी, नवीन दरगढ़ जी, आप लोगों का बहुत बहुत पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे, और एक एक आप लोगों से बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में चाहेंगे कि अगर आप कोई इस रेडियो के माध्यम से समाज को कोई संदेश देना चाहे तो। सबसे पहले ललित सोमानी जी, आप प्लीज़।
समाज के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि किसी तरीके की सामाजिक गतिविधियों में हम लोग सब मिल करके भरसक प्रयास करते हैं कि हम आप सहयोग करें, कभी किसी को कोई आवश्यकता हो तो वो संपर्क कर सकते हैं।
जी बहुत अच्छी बात आपने कही, और अब चूंकि नवीन डागा जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं तो हम भी जानना चाहेंगे कि वो क्या मैसेज देना चाहेंगे।
देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी कार्य जिसके द्वारा भी किया जाए वो पूरी ईमानदारी पूरी लगन से किया जाए, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो चाहे जॉब का क्षेत्र हो। यदि वो ईमानदारी और लगन से कार्य करेगा तो उसको नीचे नहीं गिरना है, वो हमेशा ऊपर ही जाएगा। और कभी भी मैं एक सिद्धांत पे चलता हूँ, कभी किसी को अगर राय मांगता है तो गलत राय मत दीजिए, हमेशा उसको अच्छी से अच्छी राय आपके हिसाब से जो बेहतर हो वो देने का प्रयास कीजिए।
बहुत ही खूबसूरत बात बताई। एक तो राय जैसी चीज होती है बहुत अहम होती है, और अगर गलत दे दिया जाए तो शायद आपने तो बस एक राय गलत दी है लेकिन सामने वाले की पूरी जिंदगी उस गलत राय पे जाके स्पॉइल हो सकती है कह सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी आपकी। नवीन दड़गड़ जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि आपका क्या संदेश है हमारे श्रोताओं के लिए आपके माध्यम से।
जी, मेरा संदेश ये है कि बिना मेहनत के कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए मेहनत ही अति आवश्यक है, और समर्पण भाव दिखाएं और निश्चित ही सफलता आपका स्वागत कर रही है।
बिल्कुल, जहां समर्पण है वहां सफलता दूर नहीं, ये तो ऐसा माना भी जाता है और कहा भी जाता है। क्योंकि आप लोगों ने हमारे हर सवाल का बेहद सरलता से जवाब दिया, और हमारे श्रोताओं को जो भी सुन रहे होंगे आज, पहले तो उनको महेश नवमी के बारे में जानकारी हुई होगी, महेश्वरी समाज के बारे में हुई, उनके कार्यों के बारे में हुई, समाज में किन किन क्षेत्रों में आपका योगदान है उसके बारे में हुई, जिसका आपने बखूबी जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। लेकिन चूंकि जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन हम अपने सभी गेस्ट से करते हैं, तो आपसे भी हम करेंगे कि आप बैठे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के स्टूडियो में, देवी पाल और गोंडा का पहला एफएम है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। इसको लेके आप लोग का क्या मानना है, आने वाले वक्त में गोंडा शहर के लिए क्या वैल्यू ऐड कर रहा होगा, कैसे परिवर्तन आ रहा होगा एक एफएम के आने से। सबसे पहले ललित सोमानी जी आपसे जानना चाहूँगा।
एफएम रेडियो आने से सामाजिक गतिविधियों के बारे में और लोकल जो समाचार हैं उनके बारे में जानकारी मिलने से आदान प्रदान होता है। इसके लिए मैं रेडियो ज्ञान स्थली को सधन्यवाद प्रदान करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कहीं ना कहीं आप बुजुर्ग हैं हमारे, और आपका मार्गदर्शन, आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं नवीन डागा जी की तरफ, और इसी बात पे, इसी प्रश्न पे मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा।
देखिए, ज्ञान स्थली, जब से रेडियो ज्ञान स्थली अपने गोंडा में आई है, पहले तो हम लोग को गोंडा में लगता ही नहीं था कि कभी कुछ ऐसा हो पाएगा। होने के बाद लगता है कि हाँ, अब ये आने के बाद हम लोग कुछ आगे बढ़े हैं, क्योंकि लोगों की अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अच्छे अच्छे विचार हमें प्राप्त हो पाते हैं इनके माध्यम से, जो कि किसी भी प्रकार के बनावटी नहीं होते हैं, जो सही और सच्चे हिसाब से बताए जाते हैं। अन्य चीज़ों में कुछ मिलावट भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो बताया जाता है वह सच्चे और सही ढंग से बताया जाता है, और इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ रेडियो ज्ञानस्थली को।
बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बोला कि सच्चे और पूरे एक सद्भाव के साथ यहाँ बात होती है, और बिल्कुल सही है कि आप ही लोग निकल के आते हैं जो इस शहर के हैं, तो उसमें कोई झूठ तो होता नहीं, क्योंकि हमारे बीच के लोग होते हैं, हमें उनके बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, और कहीं ना कहीं वही प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं क्योंकि हमें उनके बारे में पता होता है। तो उनकी जर्नी के बारे में हमको पता चलता है कि उनकी पुरानी लाइफ कैसी थी, किस तरह वो स्ट्रगल करके आगे तक आए, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है। नवीन दड़गड़ जी, क्या कहना है आपका?
रेडियो एफएम के साथ मेरा अनुभव तो खैर बहुत बढ़िया रहा, और मैं इसके लिए तो यही कहूँगा, जो सबसे अच्छी चीज़ जो आप में लगी, जो आप अपने गेस्ट को जो इनवाइट करते हैं और उनके साथ बिल्कुल जो जिस तरह की आपकी वार्तालाप होती है, हमें उनके इसी बहाने हमें उनके अनुभवों को, उनकी बचपन के उनके स्ट्रगल को जो सुनने को मिलता है, तो मन में एक बहुत से एक उत्साह होता है और एक नई तरह के एक उमंग के साथ एक प्रेरणा मिलती है कि देखिए उन्होंने इस तरह के स्ट्रगल अपने पीरियड में किया और आज वो इस स्थिति पे हैं। तो इससे हम मेरे जैसे क्या तमाम युवाओं को इस चीज़ की प्रेरणा मिलती है, जो कि एक ये बहुत ही सराहनीय कार्य है।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, और कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमको प्रेरणा मिलती है। दूसरी बात देखिए, बहुत सिंपल सी बात होती है कि जब भी इंसान देखता है तो लास्ट का सिर्फ फ्रंट देखता है, यानी आप आज किस मुकाम पे, बस वो देखता है, उसके पीछे का जो एक सफ़र रहा है, जो आपने चीज़ों को फेस किया है, जिस तरह से आपने चीज़ों से लड़के आप आगे आए हैं, ओवरकम किया है, उसको शायद जानना ज्यादा जरूरी होता है कि आज के चेहरा, क्योंकि आज का चेहरा सिर्फ आज का नहीं है, ये कल की मेहनत का चेहरा आज है जो आज दिखाई पड़ रहा है इतना निखर के। तो कुछ हमारी भी ऐसी कोशिश होती है कि हमारे श्रोताओं को, हमारे प्यारे ज्ञानस्थल लिसनर्स को आपके बारे में जानने को पता चले कि आप कहाँ की, आपकी पैदाइश है, आपने कैसे कैसे पढ़ाई की, क्या क्या स्ट्रगल रही और आज आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ताकि हमारे जो बाकी आने वाली पीढ़ी है इससे सीख
ले सके,
प्रेरणा ले सके और हमसे भी कहीं ज्यादा आगे जाके वो बेहतर कर सके। सो आप सभी लोगों का जाने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और आपने आज जो जानकारी दी हमारे श्रोताओं के लिए बहुत काम की जानकारी है और आज आपके समाज के बारे में वो काफी ज्यादा जागरूक हुए होंगे, ऐसी हमारी आशा है। और साथ ही साथ अपने लिसनर से कहेंगे कि अगर आपको आज का टॉक शो तीनों हमारे प्यारे मेहमान का समझ में आया था तो प्लीज कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आज का आपको टॉक शो कैसा लगा और सबसे अच्छा पार्ट इस पूरे टॉक शो के दौरान आपको क्या लगा। एक बार फिर से आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद
हमारे पूरे परिषद की तरफ से आपको भी धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने श्रोताओं से हम यही कहेंगे कि आज जैसे बात हुई हमारी और हमने बहुत सारी चीजों को जाना समझा, कल फिर मुलाकात होगी किसी एक नए मेहमान के साथ, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए पहलुओं को जानेंगे, उनके क्षेत्र के बारे में जानेंगे जिससे हमको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
संतान माहेश्वरी नाम है, माहेश्वरी नाम है, दिन ये बड़ा सुहाना पावन महेश नवमी नाम है, हम सब भोले की संतान माहेश्वरी नाम है, माहेश्वरी नाम है, दिन ये बड़ा सुहाना पावन महेश नवमी नाम है, जय महेश जय महेश जय महेश जय महेश। आशीर्वाद दिया भोले ने लोहार बल धाम में,
आशीर्वाद दिया भोले ने लोहार बल धाम में,
ये उत्पत्ति दिवस हमारा महेश नवमी नाम है,
ये उत्पत्ति दिवस हमारा महेश नवमी नाम है,
बहुत तरखाप की उत्पत्ति भोले मेहरबान है, भोले मेहरबान है,
दिन ये बड़ा सुहाना पावन महेश नवमी नाम है,
दिन ये बड़ा सुहाना पावन महेश नवमी नाम है। प्रभात फेरी शोभा यात्रा से हर मन हर्षाया, मिलकर साथ करेंगे भोजन अपनों का संग पाया,
मिलकर साथ करेंगे भोजन अपनों का संग पाया,
मंत्री देता है बधाई सबको प्रणाम है, सबको प्रणाम है, दिन ये बड़ा सुहाना पावन महेश नवमी नाम है, नवमी के इस दिन की देखो बात बड़ी मतवाली,
नवमी के इस दिन की देखो बात बड़ी मतवाली,
समाज को
पूरा साथ में होता मिलती है खुशहाली। होता दिन भर ही आयोजन सबको मिलता मान है, सबको मिलता मान है। दिन ये बड़ा सुहाना पावन महेश नौमी नाम है। यूं ही कृपा रहे शिव जी की सर पे इनका हाथ हो, ये जन्म तो सुधर गया प्रभु अगला इन्हीं के साथ हो,
ये जन्म तो सुधर गया प्रभु अगला इन्हीं के साथ हो।
हमको गर्व है के जग में सबसे ऊंचा नाम है, सबसे ऊंचा नाम है। दिन ये बड़ा सुहाना पावन महेश नौमी नाम है। हम सब भोले की संतान माहेश्वरी नाम है, माहेश्वरी नाम है। दिन ये बड़ा सुहाना पावन महेश नौमी नाम है। ये बड़ा सुहाना पावन महेश नौमी नाम है।